आगे बड़ी प्यारी आयत आ रही है 7 to 9। हामिली ने अर्श तौबा करने वालों के हक में दुआ करते हैं। मैं अक्सर इसका एक और टॉपिक भी लिखाती हूँ, अर्शियों की दुआएं फर्शियों के लिए। हमारे कल्चर में तो बहुत ही आम है, दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्रे पे जाने ले, हज पे जाने ले, इतकाफ में बैठे हुए लोग दुआओं में याद रखिए। कोई ये नहीं कहता कि हम ऐसे काम कर लें कि हम आपकी दुआओं का हिस्सा बन जाए। अब मुझे लोग क्या कहती हैं, आप जहाँ दुआ करेंगे मेरे लिए करिएगा। मैं कहती हूँ कैसे, ये पॉसिबल नहीं। आप जब भी दुआ करें मेरे लिए करें। भाई कैसे, मैं आपको अभी दुआ दे देती हूँ, अल्लाह पर रहम करें। क्यों झूठ सच में बोल के उनको उम्मीदें दिलाऊं। और कुछ लोग हैं वो कहते भी नहीं, और वो तो पूरी दुआ है। कौन लोग, जो इस रास्ते के राही, जो अंसारुल्ला, जो इस काम में मददगार हैं, वो तो करवटों पे, रातों में, दिन में, उनको तो पता भी नहीं होता उनको किस वक्त दुआएं मिल रही हैं। तो बिल्कुल ऐसी गैर मखसूस दुआएं, अल्लज़ीन यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहू, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की दुआएं। और यहाँ ये भी याद रखिए, इंसान दुआ करेगा ना तो पता नहीं उसकी कबूल भी होती है कि नहीं। उसके और दुआ की कबूलियत के रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल, कितनी हराम चीज़ें हैं। और फरिश्ते तो मासूम हैं। और फिर फरिश्तों में से भी सबसे आला दर्जा हामिलीन अर्श फरिश्तों का। जैसे नबियों के दर्जे हैं ना, तो फरिश्तों के भी हैं। तो हामिलीन अर्श की अहले ईमान के लिए दुआ क्या है, आप जरा सा पहले आप इस दुआ का टेक्स्ट देखें तो आपका दिल खुश होगा। इसका उर्दू तर्जमा पढ़ देती हूँ ताकि आप महसूस करें कि हमें तौबा करके इन दुआओं का हिस्सा बनना है इंशाल्लाह। पहले तो वो क्या करते हैं, युसब्बिहू नबी हमदी रब्बी, वो अपने रब की तस्बीह करते हैं। व युमिनू नबी, फिर वो ईमान भी लाते हैं। फिर व यस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, बख्शिश मांगते हैं किन के लिए, ईमान वालों के लिए। आप यहाँ बैठी हैं और अगर आपको कोई मैसेज भेजता है कि मैं इस वक्त हरम में बैठी हुई हूँ और मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, सच बताइए एक लम्हे के लिए कैसा होगा? और आमतौर पे वो लोग जिनको फ़ायदा होता है ना, जो कुरान पढ़ते हैं, फिर उनको वहाँ जाके समझ आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मैसेज हमें फिर उन्हीं मौक़ों पे मिलते हैं कि यहाँ आपके लिए दुआएं हैं, हाय आपने कुरान सिखाया हमें, इमाम सुदेस की बात समझ आ रही थी, पढ़ा पढ़ा हमें समझ आ रहा है, अच्छा इतना कुछ आपसे सुना हुआ था इन जगहों का, अब यहाँ आके ये हुआ। वो खुद ही दुआएं करते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। कभी बच्चा बीमार है या बच्चा सोया हुआ है और माँ दुआ कर रही है। अब आपको कोई फरिश्तों में से दुआ दे रहा है, आपको कैसा लगेगा? और वो दुआ लेने की शराइत क्या है, वो पहले तो तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह इनके गुनाह बख्श दे। अपना कोई भी गुनाह सोचिए। अच्छा हमें तो गुनाह गुनाह नहीं लगता ना, चले मस्ती, चले ज़रा फन, हल्ला गुल्ला, गपशप, कितने खूबसूरत नाम रखे हुए हमने गलत चीज़ों के। अब आप कोई गलत काम कर चुकी हैं और फरिश्ता कहता है अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको बख्श दे, क्योंकि आपने तो हर चीज़ को अपनी रहमतों से घेरे हुए और इल्म भी आपको। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, नंबर एक क्वालिफिकेशन टू गेट दी दुआ ऑफ हामिलीन अर्श के, तौबा कीजिए। दूसरा वत्तबऊ सबीलक, अब तेरे रास्ते पे भी चले, ठीक है भूले हुए थे ख़त्म, अब दोबारा हम वापस अपने रास्ते पे आ रहे हैं। आगे वत्तबऊ सबीलक के वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, इनको जहन्नम से बचा। आप तो खुशी हो गए, आपका दिल नहीं कर रहा कि आप ऐसे फरिश्तों को थैंक यू नोट भेजें, शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर, बड़ा सुकून मिला आपकी दुआ से? नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी सिर्फ आपको दुआ मिली है। अगला हिस्सा, रब्बना वादखिलहुम जन्नातियत, ऐ रब इनको दाखिल कर दे हमेशगी की जन्नतों में, अल्लती वादतहुम जिनका तूने उनसे वादा किया है। चलिए अब और खुश हो गए आप, आपका दिल और खिलने लगा कि माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं ना। वमन सलह मिन आबाईहिम वाजवाजीहिम वजुर्रियातिहिम विद फैमिली। आपको शादी कार्ड मिले तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कितने लोगों को बुलाया। बच्चों की तो उम्मीदों पे ओस पड़ गई जब लिखा होता है ओनली हस्बैंड वाइफ। वो कहेंगे भी हमें जाने, तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा आपको नहीं बुलाया गया। इंसान की फितरत है कि वो अपनी फैमिली में खुश रहता है, कहीं भी चले जाएं। इवन कुछ सिस्टर्स जो हेल्प के लिए घरों में होती है ना, लड़कियां मेड्स, अब वो कह लीजिए कि शाही माहौल में रहती हैं, लेकिन मैं कभी उनको देखूँ तो उनके चेहरे पे बड़ी खुशी, खैर है आज मैं अपने घर जा रही हूँ, जहाँ सकते बिजली पानी भी ना हो, फैमिली को मिलने का शौक होता है ना। आप जन्नत में जाएं और आपको पता चले कि बच्चे तो आए ही नहीं, कैसा लगेगा? अम्मी अबू तो इधर है ही नहीं, भाई बहन नहीं, अच्छा वो एक भाई नहीं दिख रहा, अच्छा लगता है? आप शादी में जाएं और आपको अपने ना दिखें तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होता? तो अल्लाह कहते हैं जाओ फरिश्तों, इनके लिए दुआ करो, इनके बच्चे और ये सब आ जाएं, तो हामिलीन अर्श की अहले ईमान के लिए दुआ है। करें क्या, किस किस को फरिश्ते दुआएं देते हैं, ज़रा हदीस से जमा कर लेते हैं। नंबर एक, नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर जिक्र करने वाले के लिए। और मज़े की बात ये कि हमारे कल्चर में नमाज के बाद जिक्र नहीं, दुआएं की जाती हैं, हालांकि दुआ जो है वो नमाज में होती है। कॉल मिली हो तो बातें करते हैं ना, कि फ़ोन रखने के बाद फिर बातें शुरू हो जाते हैं। नमाज के बाद जिक्र, औराद, विरद हैं। फिर दूसरी बात है, बावजू होकर सोने वाले को हर करवट पे रात को फरिश्ता दुआ देता है। फिर बीमार की आदत को जाने वाले के लिए, आप तो उस बेचारे की आदत कर रहे हैं और फरिश्ता आपको दुआएं दे रहा है। फिर अहदीस से चौथी चीज़ जो पता चलती है, सहरी करने वाले के लिए। क्यों भला दिल नहीं कर रहा? दिल भला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी माशाल्लाह 12-1-2 बजे तक तो खाते पीते खूब भर के सोए अंदर बर्तन को, तो सहरी खाएं, उसमें बरकत है। फिर उसके बाद लोगों को खैर की बात सिखाने वाले के लिए, फरिश्ते, मछलियाँ, चिंटियाँ दुआएं करती हैं। कई दफ़ा आप इसको फील भी करते हैं, ये कैसे हो गया? अच्छा किसी मछली ने दुआ कर दी होगी, अच्छा किसी चींटी की दुआ लग गई मुझे। तो खैर का काम कीजिए, आप लोगों के दिलों में रहने लग जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह किसी के गैर मौजूदगी में दुआ करने वाले के लिए भी फरिश्ता दुआ करता है। सही मुस्लिम की रिवायत है 6927, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, कोई मुसलमान बंदा नहीं जो अपने भाई की पीठ पीछे उसके लिए दुआ करे, मगर एक फरिश्ता है जो कहता है तुम्हें भी इसी की मानित मिले, वलका मिसलिक या वलकी मिसलिक या मिसलिक, इसी जैसा तुम्हारे लिए भी हो। अब आप मुझे बताइए कि आपने मांगी अपने भाई के लिए, आपकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी कि जवाब में फरिश्ते ने कहा इसको भी वही चीज़ दे दे? फरिश्ते की दुआ कबूल होगी। तो अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगने वालों में शामिल करे, और ऐसे काम हमसे ले कि हम ऐसे फरिश्तों की दुआएं ले सकें। आगे जी, अहले जहन्नम की बेजारी, आयत 10 से 13। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में दीन की और हक़ की दावत को सुनकर बेजारगी इख्तियार की थी, उनका तذکرہ है। कैसे लोग वहाँ जाकर बड़ा ही गुस्सा करेंगे, और उन्हें बताया जाएगा कि अल्लाह को भी तुम पर बड़ा गुस्सा आता था जब तुम अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते थे, और वो कहेंगे हम जिए दो दफ़ा, मरे दूसरी दफ़ा, फ़तअरफ़ना बिज़ुनूबिना। इसको हाईलाइट कर लें, हम आज अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, है कोई हमारे लिए निकलने की जगह? का नो, जब पुकारने वाला पुकारता था एक अकेले रब की तरफ, तुम इनकार करते थे और तुम शिर्क करते थे उसके साथ। आप देखिए, ना चाहते हुए भी कुरान में से थोड़ी देर के बाद लफ्ज़ शिर्क आ जाता है, तौहीद और शिर्क, तौहीद और शिर्क, और आज इसी में हमारी कमी है। लिहाजा उसकी तरफ पलटो, फ़ायदा कोई नहीं अब, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया वक्त। इसीलिए आगे आयत नंबर 14-15 में अल्लाह को मुखलिस होकर पुकारने का तज़किरा है। फ़दुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, अल्लाह को खालिस होते हुए पुकारो, और अगर चाहिए बात कुफार को बुरी लगे, बुलंद दर्जों वाला, अर्श वाला, वो अपनी रूह डालता है जिस पे चाहता है अपने बंदों में से, ताकि तुमको मुलाकात के दिन से डराए। यहाँ लफ्ज़ देखिए, यौम तलाक, एक तलाक होती है शोहर बीवी में, वो होती है तो ऐसे तलाक़ा मुतलक, उसके अंदर क्या है जुदाई, ये कौन सी है तलाक, लिका से मुलाकात, अपोजिट। अच्छा ना ते का फ़र्क पता है ना तोए का फ़र्क है, तो हमारे मुसलमानों की तलाकें कौन सी होती हैं? क्या पता कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है तो पता चला वो तो मुलाकात की बातें हैं। यानी अरबी को सीखिए। जो मुत तलाक पे थोड़ी सी बात करूँगी, किसकी किससे मुलाकात होगी? नंबर एक, उस दिन सब अगले पिछले अहले आसमानो ज़मीन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जैसे मिसाल है कि हमारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए, अल्लाह के नबी से हो जाए। ये पहला मानी है। दूसरा क्या है, उस रोज़ हर शख्स अपने आमाल के नतीजों से मुलाकात करेगा। और भी बहुत कुछ है, हम अपने लिए सोचें, क्या मैं अपने आमाल से मिलने को तैयार हूँ? जो उनका रिज़ल्ट आ रहा है, यानी रिज़ल्ट डे होगा। फिर रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी है, आयत 16:17 में, यौमहुम बारिज़ून, बिल्कुल वो खुल के सामने आ जाएंगे। बारज़ा मैदान जंग में एक दूसरे के सामने आने के लिए आता है, यानी क़यामत का दिन होगा, सब खुले मैदान में होंगे। ला यख़्फ़ा अलल्लाह मिन्हुम शेई, अल्लाह के सामने उनकी कोई चीज़ नहीं छुपेगी। और एक सवाल होगा, इस जुमले को हाईलाइट करिएगा अपने मुसहफ़ में, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए है बादशाही आज के दिन? हु इज़ किंग, कौन है? अइनल मलूक, कोई बोलेगा ही नहीं, है ही कोई नहीं जो बोले, तो अल्लाह ताला खुद ही कहेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उसकी बादशाहत है जो वाहिद है और कहार है, गालिब है। आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया, और ना जुल्म होगा उस दिन, और बेशक अल्लाह जल्द हिसाब वाला है। तो क्या हम इस हाजिरी के लिए तैयार हैं? आखरत का दिल हिला देने वाला मंजर है आगे, आयत 18:20 में, वंजिर हम यौम अलाजिफा, आप देखिए क़यामत के नाम आ रहे हैं आपके सामने, पीछे यौम तलाक, तो यहाँ यौम अलाजिफा, करीब आने वाला। इनको डराओ उस दिन से जो करीब आने लगा है, जब दिल हलक में होंगे। खौफ की हालत में आप अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुनते हैं, उर्दू में आप कहते हैं, मेरा दिल धक धक कर रहा था। ये है मुहावरा, धक धक करना क्या होता है? लदल हनाजिर काजमीन, गम से भरे हुए। कुजूम क्या होता है? आप कभी हॉट वाटर बॉटल लेते हैं ना, तो उसको ऊपर से ढक्कन जोर से बंद करते हैं कि खुदा ना खास्ता खुल गया तो नुकसान होगा। इस कैफियत को कुजूम कहते हैं। सांस का रोकना, सांस की नाली, पीछे आप पढ़ क्या रहे हैं, काजमीन अलगैस, गुस्से को काबू करने वाले। असल तो इम्तिहान ये है, जब आपको गुस्सा आया तब जुबान बंद रखे। आप कहते गुस्सा आ गया फिर मैं बोल पड़ी, तो क्या प्यार में लोग गालियाँ देते हैं? इसके ऊपर भी गौर की ज़रूरत है हमें। फिर इसके बाद देखिए कि यौम अलाज़िफ़ा पे थोड़ी सी मज़ीद बात समझिएगा। क़यामत का दिन है जब लोग इतने खौफ में होंगे कि उनके दिल घुट कर हलक तक पहुँच जाएंगे, और जालिमों का कोई ना दोस्त होगा ना सिफारशी होगा। घबराहट, खौफ, किसी को ऑपरेशन से डर लगता है ना, तो जो ही उसको ऑपरेशन रूम में ले जाने लगते हैं, वो कहते हैं मेरा दम घुट रहा है। ज़रा सोचिए क़यामत का दिन कितना ऐसा दिन होगा जिसके बारे में हम उस दिन खौफ महसूस करेंगे। अल्लाह हमें यहीं अपनी इस्लाह की तौफीक दे। किसी का भी हक मारा है, किसी से ज्यादती के, फ़ौरन तौबा कीजिए, माफ़ी मांग लें, आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट, आई वॉज रॉन्ग। कुरान तो आपको ये सिखाएगा, कुरान कभी नहीं कहेगा कि जाके खूब बदले लो, जाके लड़ाइयाँ करो, ज़रा जाकर लोगों को खरी खरी सुनाओ, नो। ये सिखाने वाली दुनिया बहुत है हमें। कुरान की इस महफिल में आप वेल मैनर्ड अच्छे लोग बनेंगे इंशाल्लाह। आगे तारीख से इबरत है, 21:22 में अल्लाह ताला कहते हैं, क्या इन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की? और देखते तो सही कैसा हो गया अंजाम उन लोगों का जो इनसे ज़्यादा सख्त है। किस में? अशद मिनहुम कुव्वा। इसका इंग्लिश तर्जमा आज कर दूँ, सुपर पावर। बल्कि उनको मानता कि है कोई हमसे ज़्यादा कुव्वत में। किधर गए वो सारे? उनमें से एक बड़ा शख्स फिरौन। लिहाजा आगे आले फिरौन की सरकशी है, आयत 23:27 में, वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना, यानी मूसा और फिरौन का किस्सा बयान हो गया दोबारा, कि फिरौन ने बेटों को ज़िबा करना चाहा, अल्लाह ने वही बच्चा उसके अपने घर में पलवा लिया, या उसके अपनी ज़ेरे निगरानी पलवा लिया, जो कल उसी के लिए हलाकत का ज़रिया बना। फिर मोमिन आले फिरौन का ईमान अफरोज़ कलमा हक है, यानी अगली आयतें जो ना उस पर ये सूरत मोमिन है, जिसका नाम आता है ना सूरत मोमिन। और गाफिर क्यों कहते हैं? पहले जुमले गाफिर अज़म पे। तो यहाँ से अब किस्सा है मोमिन का, जो आले फिरौन में से था लेकिन ईमान बहुत था उसमें, तो उसने कलमा हक जो बयान किया, वकाल रजुम मोमिन, और कहा उसने जो मोमिन था आले फिरौन में से, यक तुम ईमान हो, छुपाता था अभी अपना ईमान, क्योंकि जाहिर करने पे तो मार दिया जाता। क्या कहता था, अतक्तुलूना रजुलन, क्या तुम कत्ल करते हो एक शख्स को सिर्फ इस जुर्म पे, यकूल रब्बी अल्लाह, कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह। आप कहते, ये जुमले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मक्की दौर के शुरू में नबी सल्लम के लिए भी बोले थे, जब मक्का वाले आपको ज़ुदो कूब करते थे, मारते थे, तो हजरत अबू बकर बीच में आ जाते थे, कहते थे क्यों मारते हो इनको, हत्ता कि वो उनको छोड़ के इनको मारने लग जाते और ये बेहोश हो गए एक मौके पे। इनकी बेटी कहती है कि इनके बाल उन्होंने खींचे कि बाद में इनके बाल जड़ों समेत हाथों में आने लगे। नबी का दिफा करना तो ऐसे सीखा हमने। तो ये शख्स बहुत दर्द के साथ कौम को दावत देता है कि तुम ये काम ना करो और वो काम ना करो। और इसमें जो बहुत ही खूबसूरत सी बात है वो देखिए, व या कौमी इन्नी अखाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद, आप नोट कर लें, आपने सूरह गाफिर में तीसरा नाम पढ़ लिया क़यामत का, पहले क्या यौमत तलाक, फिर यौम अलाजिफा, और यहाँ यौमत तनाद। ये यौमत तनाद बता क्या है, नादा, नादिया, पुकारना, चीखो पुकार का दिन होगा, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट दिस, तसव्वुर लाइए। अल्लाह हमें ईमान दे दे। और इसने अपना बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा किया, लेकिन आले फिरौन का बंदा मोमिन के खिलाफ जारहाना रवैया, आयत 36 से 44 है, जुल्म किया इन्होंने। बल्कि यहाँ आपको अब हामान का लफ्ज़ भी दिख रहा है। ये कौन था, फिरौन का वजीर था, और फिरौन हुकूमत का सिंबल है, कायरून दौलत का है, हामान जो था ये उसके लिए इमारतें बनवाता था। ये सारा कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं, अपने से सवाल कीजिए। इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये वक्त के बड़े बड़े तागूत जो गुजर गए, तुमने इनसे इबरत लेनी है। हाँ, जुमला नोट कर लीजिए आयत 44 का, फसतस्कुरू नमा अकूलु लकुम, बंदे मोमिन को जब उन्होंने बहुत तकलीफ दी, मारने के दर पे हैं, और ये अल्लाह का बंदा मुखलिस है, देखो मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ ये कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, फिर अनकरीब तुम मुझे याद करोगे। आपके माँ बाप भी ये जुमला बोलते थे, अच्छा एक दिन आएगा याद करोगे हमें, फिर तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। बचपन में अच्छा नहीं लगता माँ बाप की रोक टोक, और एक वक्त आता है कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं होता। और अगला जुमला इससे भी खूबसूरत, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, इसको तफवीदुल अम्र कहते हैं, कि मैं अपने और अपने मामले के बीच में से निकल रहा हूँ और मैं अपना मामला अल्लाह के हाथ दे रहा हूँ। अब देखिए, बिजली का बिल आपने पे करना है, आप नहीं देते, वापटा वाले आपकी बिजली काट दें, आपको उसका फाइन दे दें, वट एवर जो भी कर दें। बाहर की दुनिया में कुछ कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जब कोई कस्टमर बिल पे नहीं करता ना, तो उसको हायर कर लेती हैं। वो कंपनी असल बिल मालिक को या कंपनी को दे के फारिग कर देता है, फिर ये उस बंदे से डील करता है और उसको इंटरेस्ट लगा लगा के दुगने से तिगना भी देता है, यानी वह इंटरेस्ट की क्या शक्लें हैं इसको आप समझिए। अब वो दूसरा जो है ना, वो लिहाज नहीं करेगा, पहले ने तो हो सकता है कुछ, चलो छोड़ो मैं तुम्हें 20% छोड़ दूँ। बिल्कुल इसी तरह इस जुमले से, इस मिसाल से समझिए कि जब हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं ना अपना मामला, तो फिर वो बड़ा सख्त मामला होता है, लोगों को माफ़ कर दिया करें। कभी कभी हम अपनों प्यारों को कहते हैं अल्लाह तुम्हें पूछेगा, अच्छा मेरा मामला तो अल्लाह पे, ये भी नहीं कहना चाहिए, चीखें निकल जाएंगी आपकी, आप जो उसे करेंगे वो तो अपने हिसाब से करेंगे, तो अल्लाह तो इससे भी ज़्यादा कर सकता है ना, तो लिहाजा माफ़ कर देना चाहिए। आगे अजाब कब्र की बात है फिरौन के नाते से, 45 से 46 में अल्लाह कहते हैं, उस मरदे मोमिन को तो हमने उनसे बचा लिया जो वो बुरे काम करते थे, लेकिन फिरौनियों को बुरे अजाब में ले लिया, सुबह शाम आग पे पेश किए जाते हैं। अब ये कब हो रहा है, अब हो रहा है ना बरजख में, तो ये अजाब कब्र पे दलील है, अजाब कब्र हक है, आले फिरौन पर सुबह शाम आग पेश की जाती है। अल्लाह के नबी ने हर नमाज में अजाब कब्र से पनाह मांगनी सिखाई, तो अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचा दे। आज इस पे भी बड़े मुख्तलिफी मसाइल आ गए, बस हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि अल्लाह तेरे नबी ने जब कह दिया कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अजाबिल कब्र, तो बात ख़त्म, फिर लंबी चौड़ी बहसों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है।